मंडल प्रवेश प्रवचन अनुमान की कृपा का।
ओम नमो वज्रायनम, ओम नमो नवे सभ्य साहूनम, पंच पन्ने की भगवान की। बोलिए 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की। बोलिए 108 परम पूजा 40 विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज 108 श्री आचार्य श्री नवी सागर महाराज की। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री क्षमा सागर महाराज की। संसार में विनय की गरिमान वाली, संसार में विनय की गरिमान वाली है शत्रु मित्र बनता, है शत्रु मित्र बनता मिलती शिवाली। जो धारे अतीत विनय श्रावक है, जो धारे अति विनय को श्रावक पुजारी, जाते सुशीघ्र भी भवे बार के किनारी। विनय सबसे बड़ी चीज है। विनय करने में शत्रु भी मित्र हो जाता है। ऐसी विनय नहीं कि शत्रु के तुम ज्यादा विनय करो, नहीं, इतनी विनय अगर आ जाए अपने दौरे शत्रु तो आओ बैठो, इतनी बहुत, तो वो भी शत्रु मित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं विनय गुण सबसे अच्छा होता है। देखिए एक नगर में मुनि राज आए, राजा अशोक रानी रोहिणी परिवार से दर्शन को गए। दर्शन का पूछा है मुनिराज, इस नगर में शोक का कारण क्या है? उस नगर में आदमियों के लिए शोक था और मुनि राज पहुंचे तो राजा अशोक ने पूछा, भगवान इस नगर में शोक का कारण क्या है? कारण क्या है? मुनिराज ने कहा, इसी नगर के पूर्व, इसी नगर के पूर्व नीमाचल पहाड़ है, उस पर एक मुनिराज तप करते थे। एक दिन वन में भील को शिकार नहीं मिली। मुनिराज चर्या को नगरी में चले गए। भील ने जिस शिला पर मुनिराज सामक को तप को बैठते थे, ध्यान करने बैठते थे, भील ने उस शिला को खैर के अंगारों से तप्त किया। खैर की लकड़ी जला कर उसके अंगारों से उस शिला को उस भील ने तप्त कर दी। और सदा को तप्त करने के उपरांत जब उसने देखा कि साधु आ रहे हैं, तब वे अंगारे उठा अलग करके उसने, और वहां पर उसी घास वगैरह से झाड़ दिया, सफाई कर दी, हटाकर छिप गया। मुनि रानी उसी सदा पर आकर के तत्काल ही पहला पांव रखा और दूसरा पांव भी सिरा पर पड़ गया। अरे मुनिराज, ना तो उस सिरा से दूर हो सकते हैं, क्यों, वह तप्त सिला है। अब उपसर्ग आया है, मुनिराज उस उपसर्ग को समझ कर और वहीं पर उस जलती हुई शिला पर इतने होकर के ध्यान में मग्न हो जाते हैं, पर शिला तो बहुत गर्म थी। मुनिराज एकदम गिर पड़ते हैं और गिरने से मुनिराज के अंग भंग में अनेक जाना वह तप्त शिला छू जाती है। आखिरी में क्या होता है कि मुनिराज असहनीय वेदना को सहते हुए संलेखना में मग्न हो जाते हैं और मुनिराज शरीर छोड़ करके मुनिराज को वहां पर एक क्षण भर को केवल ज्ञान प्राप्त तो हो जाता है। केवल ज्ञान अंतकृत केवली होने के उपरांत मुनिराज का निर्वाण हो जाता है और वहां पर देव लोग आकर के मुनिराज के ज्ञान कल्याणक निर्वाण कल्याण की पूजा करते हैं। देखिए अब वहां पर उस भीड़ को कुष्ठ रोग हो जाता है, तत्काल ही सारे शरीर में कोर फूट जाता है, रुधिर राज बहने लगती है। असहनीय वेदना से वह कई दिन में असहनीय वेदना सहता हुआ मरण को प्राप्त और वह नरक जाता है। नरक में छेदन वेदन तारण तापन अनेक प्रकार के दुखों को असनी सहता हुआ वह नरक की आयु पूर्ण करके और वह इसी गांव में ग्वाला के यहाँ पुत्र हुआ। वह ग्वाला का पुत्र एक दिन जलती हुई अग्नि में गिर गया। देखो दूसरे को कुआ खोदो तो खुद गिरने पड़ता है, नरक के दुख भी सहे, अब भी पाप पूरा नहीं हुआ तो वह ग्वाले का लड़का भी वो जलती हुई अग्नि में गिर गया। सारा शरीर जल गया और वह असहनीय वेदना, अब देखिए वह तड़फड़ता कई दिनों में असहनीय वेदना सहता हुआ मर गया। कुटुंबी जन रो रहे, कुटुंबी जन रो रहे और रोहिणी रानी राजा बसुपाल और रानी रोहिणी नगर में धनवंतर सेठ के पुत्र हुआ, उसके शरीर के दुर्गंध वह मर करके नगर में धनवंतर सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, उसके शरीर से दुर्गंध, वह दुर्गंध पुत्री हुई और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, दुर्गंध नाम ऐसी दुर्गंधा नाम थी, उसकी दुर्गंध ऐसी आती थी कि उसके हाथ से भिखारी भी स्वर्ण नहीं लेता था। अगर वह भिखारी को स्वर्ण का भी दान करे तो भिखारी उसके सामने से भग जाता था, ऐसी दुर्गंध असली हुई। नगर में एक शीर्षेन नाम का एक सेठ था, उसने उसको वह चोरी करता था, चोरी भी की और आदमी की कत्ल भी की। वह पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा दी जा रही थी। श्री दत्त सेठ ने कहा, तुम्हें अगर हमारी बेटी के साथ विवाह करवाने के लिए तैयार हो जाओ तो हम राजा से कह करके विनय करके तुम्हारी फांसी बचा सकते हैं। किसके साथ? उस दुर्गंधा के साथ। पर वह श्री सेठ तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं फांसी लगवाने के लिए तैयार हूं, मैं ऐसी इस दुर्गंधा के साथ शादी नहीं करूं। पर उसके घर के कुटुंबी जनों ने उसको कहा, तुम छोड़ देना, अभी तो तुम शादी मंजूर कर लो। उसके साथ विवाह करवा दिया। अब वह विवाह होने के उपरांत ही से उस दुर्गंधा की अपेक्षा फांसी ही मंजूर चाहता था। फांसी लग जाती तो ठीक रहती, और इससे संपर्क इनने करवा दिया, अब मैं घर में नहीं रह सकता, इससे तो कोई स्वर्णी दान में नहीं देता है, हमने क्या बतलाइए। उस पाप के कारण उसके लिए इस प्रकार की शरीर मिला, इस प्रकार की गति हुई है, और उससे वह भी फांसी लगने को तैयार होता है, पछताता है। एक जन एक आज का माता जी आहार को निकल रही थी, वह दुर्गंधा रो रही थी। माता जी ने उसके ऊपर दिया कि भैया समझो बात के लिए, कितनी दुर्गंध आती थी, पर माता जी खड़ी हो जाती हैं, उसके ऊपर दया करके इसका कल्याण हो जाए। माता जी ने उसको उपदेश दिया और साथ में दुआ जा करके माता जी ने उसको विध नियम दिए। एक दिन दुर्गंधा मुनि जी के दर्शन कर पूछा, महाराज मेरे शरीर के दुर्गंध का कारण क्या है? मुनिराज ने कहा, गुजरात गिरी एक नगर है, वहाँ एक सेठ गंग दत्त नाम का वंशोत्सव में जा रहा था। उसी समय मुनि गुण सागर
चरिया खूं आए तो मुनिराज को विधि पूजा के आहार कराने को पूजा करने के उपरांत से वह आहार देने को उत्सुक था। उसी समय राजा की आज्ञा आती है, तब वह पति अपनी स्त्री गंगदत्ता से उस यह कहते कि तुम मुनिराज को आहार देना। उसने कड़वी चूमड़ी आहार में मिला दिया। ये बड़ा घर देख करके आए, कोई गरीब के आहार नहीं दिया हमने। यहाँ आए यहाँ मालपुआ मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया आहार होगा। तो मेरे दरवाजे आकर के जब मेरे पति ने इनके लिए नमोस्तु किया तो ये खड़े हो गए। अगर ये नहीं जाते तो मैं भी उस उत्सव में जाती पति के साथ। हमने इनको ऐसा कड़वा गिलास दूं कि जिससे कि यह आहार छोड़कर जल्दी चले जाए, जिसमें मैं भी जाकर उत्सव में पहुंच जाऊं। ऐसे विचार कर उसने मालपुआ मिष्ठान को ढांक दिया और कड़वी चुमड़ी मिला करके और उसने गिलास में दे दिया। मुनिराज ने विचार किया कि अगर जिस प्रकार इसी अंजली के ऊपर श्रावक है निष्ठान का ग्रास रख देता है, उसके लिए मैं रह लेता हूँ, इसी प्रकार इस कड़वी वस्तु के लिए मैं क्यों छोड़ूं। मुनिराज ने स्वाद का विचार नहीं किया। मुनिराज ने कड़वे ही ग्रास लेते रहे और आहार के उपरांत मुनिराज जिनालय में पहुंच गए। तो जिनालय ने असनीय वेदना मुनिराज को होने, उस वेदना के उपरांत श्रावक जन दौड़े दौड़े आ गए और यहां तक हुआ कि मुनिराज की समाधि हो गई। जब मुनिराज की समाधि हो गई उस समय शोभा यात्रा में मुनिराज का शव निकाला जा रहा था। उसी समय वह गंग तट से राजा के साथ वापस आता है। पूछने पर मालूम होता है कि तुम्हारी पति ने कड़वी दवाई दे दी, इससे मुनिराज को वेदना होते हुए समाधि हुई। वह गंगदत्त घर नहीं जाता, तत्काल ही वह मुनिराज की शोभा यात्रा में शामिल हो जाता है और उन मुनिराज के आचार्य श्री से जाकर विनय करता है। हे भगवान, आज ये कि मुनिराज की समाधि हो गई, इन मुनिराज के समाधि के उपलक्ष में मैं आज जिनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो वह तो जिनेश्वरी दीक्षा ले लेता है और राजा उसे स्त्री के लिए नाक कान छिदवा करके और गजे पर काला मुंह करके बैठा करके नगर से निकलवाता है और डोरी पिटवाता है कि ऐसा आहार कराने वाले का ऐसा ही मुकाला कराना और राजा अपने राजपुत्र को राज दे करके और जाकर के जनेस की दीक्षा ले ली। संसार में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, अज्ञान के बसीभूत होकर प्राणी क्या क्या कर बैठता है इसका कोई पता नहीं, क्या क्या करता है। कहते हैं कर्म सवई को लागे भाई, कर्म सवई को लागे, जो जिसके साथ जैसा करता है वैसा भोगने पड़ता है, और उसे दुर्गंधा के लिए मुनिराज ने कहा तुम रोहिणी बिट को पालन करो, बिट पूरा होने पर उद्यापन करना, विधि विधान से जिनालय में बच्चियां भेंट करना, विधि विधान से सापों के लिए भोजन कराना, इस प्रकार से सारी विधि बताते हैं। और वह रोहिणी वृत करती है, वृत करने के उपरांत उसकी दुर्गंध दूर हो जाती है। बतलाइए, पाप तो कर देता है आदमी, लेकिन अगर धन की इच्छा में डर जाता है, जिस प्रकार की गर्मी की तपन में वृक्ष की छाया कितनी अच्छी लगती है, इसी प्रकार इस जीव के लिए पाप के छूटने के लिए धर्म की छाया में बैठ करके अपना कल्याण करना चाहिए। बोलिए भगवान मामी स्वामी जी।
बोली जो भाई जी ने कहा आदिनाथ भगवान की जय। अब मैं सकल जगवचन समाचारों की ओर से, माता बहनों की ओर से, परम सत्य पंडित जी चरणों में निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी मंगलमयी वाणी के माध्यम से हमें सदुपदेश देने की कृपा करें। परम सत्य पंडित जी सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्यवाद मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिवर श्री इष्टवाद भव्य सागर महाराज की जय। परम पूज इष्टवाद मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय। परम पूज इष्टवाद मुनिवर श्री श्रेयान सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ महा मुनिराजों की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। दस लक्षण महापर्व की जय। अहिंसामयी महान जैन धर्म की जय। साधर्मी महानुभाव माताओं एवं बहनों, पर्वराज पर्युषण का आज तप के बाद त्याग का दिवस है। त्याग के बाद आकिंचन और ब्रह्मचर्य, दो दिवस और शेष हैं। आज उत्तम त्याग के दिवस के दिन मैं आपसे त्याग धर्म के बारे में कुछ चर्चा करूं। जीवन में आना और जाना चलता रहता है। अर्जन और विसर्जन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन अर्जन के साथ यदि विसर्जन होता है तो वह अर्जन भी सार्थक हो जाता है। लोग अनुभवी वृद्ध लोग कहा करते थे कि कुएं में पानी भरा है और यदि उस कुएं के पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह पानी सड़ जाएगा, लेकिन यदि अनवरत रूप से कुएं के पानी का उपयोग होता रहता है तो वह कुएं का पानी स्वच्छ बना रहता है, निर्मल बना रहता है, क्योंकि उसमें अर्जन की प्रक्रिया भी हो रही है और विसर्जन की प्रक्रिया भी हो रही है। और जहां अर्जन और विसर्जन की प्रक्रिया होती है वहां कार्य नियमित और विधिवत संपन्न होते रहते हैं। महानुभाव, हमारे अपने जीवन में अर्जन और विसर्जन की प्रक्रिया अनवरत रूप से होती रहती है, जिसका उल्लेख मैंने कल भी किया था। मेरा आशय यहाँ अर्जन से दूसरा है। यहाँ कर्मों का अर्जन यह जीव निरंतर करता रहता है और कर्मों का विसर्जन भी, कर्मों का पलायन भी जीव के माध्यम से होता रहता है। ये बात कल हमने तप धर्म के माध्यम से जानी और सुनी थी। हम दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार की वासनाओं को, अनेक प्रकार के विकारों को ग्रहण करते रहते हैं और जब विकार हमारे अंदर संग्रहित हो जाते हैं तो वह विकार कर्म के उदय के रूप में उदयाबली में आते हैं और वह जीव महान कष्टों का उपभोग करने लगता है। इसलिए आज त्याग धर्म के दिवस के दिन मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन और गुजारिश करना चाहूँगा कि महानुभाव, हमारे अंदर जो विषय वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो अनादिकालीन राग द्वेष और मोह की परिणति विद्यमान है और भी हमारे अंदर जो मोह के उदय से अनेक विकारी भाव जिनकी कोई संख्या नहीं की जा सकती है, जितने कर्म सिद्धांत के भेद किए जा सकते हैं उतने ही राग द्वेष आदि भावों के भेद किए जा सकते हैं, जो हमारे जीव के माध्यम से ही आते हैं, जिनका संचय हमने अपनी आत्मा में कर लिया है, हमें उन विकारी भावों को अपनी आत्मा से विसर्जित करना होगा। सच्चे मायने में तो त्याग यही है। हम त्याग करते हैं उसकी दो परिभाषाएं हैं। एक तो हमने सांसारिक भौतिक सामग्रियों का जो संचय किया है उसका हम त्याग करते हैं, और वह त्याग दान के रूप में कर सकते हैं। दूसरा त्याग, हमने जो अनादि काल से राग देश आदि परिणति का संग्रहण कर लिया है, उसका विसर्जन भी आवश्यक है। और जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा, तब तक बाह्य में दान देने का भाव भी हमारा नहीं होगा। एक संस्मरण और एक कथानक आता है, आप सबने भी सुना होगा कि एक मुनि महाराज से एक श्रावक ने कहा कि महाराज, मैं आपको आहार देना चाहता हूं। मुनि महाराज ने कहा, आहार देने की कोई बात नहीं है, आहार देने वाले में भी योग्यता होना चाहिए। मुनि महाराज को आहार कोई भी यदवा तदवा व्यक्ति नहीं दे सकता, वह संयमी हो, आचार विचारवान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, जागरूक हो, आहारचर्या की विधि को जानता हो, अपने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि मानता है। यदि ये सारे समूचे गुण आपके अंदर भी हों, तो आप भी आहार दे सकते हैं और वह व्यक्ति ठोका लगाता है, बहुत बढ़िया सामग्री वह श्रद्धा और भक्ति के साथ में मुनि महाराज के आहार देने के लिए बनाता है, मुनि महाराज का पड़गान होता है और फुल्लक महाराज शुरू, फुल्लक महाराज का पड़गान होता है और वे अपना कटोरा ऐसा सामने करते हैं, इसने खीर बनाई थी, वह खीर चम्मच से उस कटोरे में देने वाला था और जैसे ही उस कटोरे में कोयले की गांठें उसने देखी, उस व्यक्ति ने अपने खीर का कटोरा पीछे कर लिया, देते हुए हाथ को जब पीछे कर लिया तो उन महाराज ने अंतराय मान के वो चले गए। दूसरे दिन फिर यही घटनाक्रम हुआ और फिर वही कोयले की गांठें उस कटोरे में देख के उसने फिर अपना कटोरा पीछे किया। उसने सोचा कहीं ना कहीं कोई बात है, वह दिन रात विषय वासनाओं की पुष्टि में लगा रहता था। एक दिन उसने महाराज से निवेदन किया, महाराज, दो दिन से मैं आपका पड़गान कर रहा हूं लेकिन आहार नहीं हो रहा है। महाराज श्री ने कहा, आहार क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो आपके यहां जाता हूं, कटोरा भी आपके सामने करता हूं आहार ग्रहण करने के लिए, तत्पश्चात भी आप आहार का कटोरा पीछे कर लेते हैं। श्रावक कहता है, महाराज, आपके कटोरे में कोयले की गांठें देखकर मैं अपनी भावना से बनाई हुई स्वादिष्ट और सुंदर खीर को पीछे कर लेता हूं। महाराज ने जवाब दिया, बस भैया यही बात तो है, जब तक आपके हृदय में राग द्वेष रूपी कोयले की गांठें पनप रही होंगी, तब तक वह आहार देने की पात्रता नहीं होगी। राग द्वेष का जब तक आप विसर्जन नहीं करेंगे, विषय वासनाओं का जब तक विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक आपके द्वारा बनाई हुई वह अच्छी से अच्छी खीर भी उस कटोरे में डले हुए कोयले की गांठों से दूषित हो जाएगी। जैसा आप जिस पवित्र भावना से मुनि महाराज को आहार देंगे, वह आहार भी उन मुनि महाराज को उसी पवित्र भावना से दिया हुआ आहार उनकी साधना उनके मूल गुणों में साधक होगा। इसलिए हम मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि के साथ में यह भी कहते हैं कि हे महाराज, आहार और जल भी शुद्ध है, क्योंकि उस आहार जल का प्रभाव मुनि महाराज की पूरी चारित्र की साधना के ऊपर पड़ता है। इसलिए महानुभाव, हम आहार दान देते हैं, आहार दान देने के पहले अपने हृदय के अंदर जो कलुषित और विषय वासनाएं हैं उनका विमोचन करें और इसके बाद जो आहार आप देंगे वह आहार निश्चित रूप से सार्थक होगा। इसलिए महानुभाव हमें सबसे पहले दान तो निस्पय भावना से दिया जाता है और त्याग भी उदासीन भावना से किया जाता है। बरणी जी महाराज जब सवारी में बस में बैठते थे, उन्हें सागर से द्रोणगिरी जाना था, बड़ा मलेरा तक के लिए बस थी। बहुत अच्छे सिद्धांत बरणी जी के जीवन के थे। बरणी जी जब भी कहीं जाते थे 10 मिनट पहले बस में सवार हो जाते थे। उस दिन भी उन्हें द्रोणगिर जाना था। वह छतरपुर वाली गाड़ी में, सागर से जो छतरपुर जाती है उस गाड़ी में अपने सिद्धांत के अनुसार 10 मिनट जाके सबसे पहले वाली सीट में जाके बैठ गए। स्वाभिमानी भी थे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान होना भी चाहिए। स्वाभिमान के बिना जो जीवन जीता है वह जीवन प्यार के समान होता है। इसलिए स्वाभिमान हमारा गुण है। अभिमान का पुट कभी जीवन में आना नहीं चाहिए और स्वाभिमान की रक्षा स्वयं ही होनी चाहिए। बरणी जी ने ऐसा ही किया। जिस समय बरणी जी गाड़ी में बैठे थे, बस में बैठे थे, बरणी जी अकेले थे, एक दो सवारी और थी, बरणी जी आगे बैठ गए। 10 मिनट के अंदर पूरी बस भर गई। परिचालक जो कंडक्टर था उसने बरणी जी से कहा, वो तो समझ रहा था कोई सामान्य व्यक्ति होंगे, उन्होंने कहा दादाजी आप इस सीट से उठ जाइए। बरणी जी ने कहा भैया क्यों? क्योंकि उनका भैया शब्द तो उनका पर्यायवाची शब्द था, उनके जीवन में अवतरित होने वाला शब्द था। कितनी करुणा और वात्सल्य से भरा हुआ वह भैया शब्द होता था। जब उन्होंने कहा भैया मैं तो इस सीट पर 10 मिनट पहले आके बैठ गया था, अब इस पे से क्यों उठा रहे हो? बोले बाबा जी इस सीट पर दरोगा जी को बैठना है। दरोगा जी उस समय थानेदार या किसी से कहते होंगे। बरणी जी ने कहा भैया इस सीट पे जब मैं 10 मिनट पहले से बैठ गया था, किराए की रसीद मेरे पास में, टिकट मेरे पास में, फिर मुझे क्यों उठा रहे हो? उन्होंने कहा आप बहस करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी इस सीट से उठ जाइए। वो बरणी जी ने उस टिकट को उस परिचालक को सौंपा और गाड़ी से नीचे उतर आए और मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा और गाड़ी की सवारी का त्याग कर दिया। महानुभाव इन महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। त्याग तो जब हृदय में चोट लगती है, जब स्वाभिमान को धक्का लगता है, जब परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, त्याग की भावना तो उसी समय जागृत हो जाती है। हम बुराइयों का त्याग नहीं कर पाते हैं और जो चीजें दूषित हैं उन चीजों के प्रति भी हमारी जो अनुरक्ति है, आसक्ति है, उसका विसर्जन हम नहीं कर पाते। हमसे कहा जाता है कि तुम्हें आलू नहीं खाना है, तुम्हें प्याज नहीं खाना है, तुम्हें मूली नहीं खाना है, तुम्हें गाजर नहीं खाना है, तुम्हें गणंत नहीं खाना है, ये अभक्ष हैं। इसके लिए आपसे बार बार गिड़गड़ाना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, लेकिन इन बुराइयों के त्याग के प्रति भी आप उन्मत्त नहीं हो पाते हैं, उन्मुक्त नहीं हो पाते, अपनी विचारधारा कायम नहीं कर पाते हैं। महानुभाव सही मायने में तो त्याग वही है जो हृदय से जिसका त्याग किया जाता है। एक त्याग तो लादा जाता है, आपको जबरन प्रेरित किया जाता है, आपके हृदय में उस त्याग के प्रति भावना नहीं होती। ऐसा किया गया त्याग कभी फलीभूत नहीं होता और उसमें अतिचार और अनाचार लगते हैं, लेकिन जो त्याग उन मुक्त भावना से हृदय से उसके प्रति ग्लानि होने के बाद किया जाता है वह त्याग जीवन भर कायम रहता है और मुक्ति के सोपान का साधक बनता है। महानुभाव हमें अपने अंदर पनप रही राग द्वेष रूपी वृत्ति का त्याग करना है। जो निरंतर हम अवक्त का भक्षण कर रहे हैं, उस अवक्त के भक्षण का त्याग करना है और इसके पश्चात जो हमने अपने पुण्य कर्म के उदय से संपत्ति का अर्जन किया है उस संपत्ति के अर्जन में से भी हमें कुछ हिस्सा अच्छे कार्यों के लिए जिनायतनों के लिए जिनायतनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विसर्जित करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, जिससे आपका भी उपकार होगा और दूसरे का भी उपकार होगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। राजा भोज बहुत बड़े दानी थे और जब भी वो देते थे उनकी दृष्टि नीचे हुआ करती थी। और एक बात और ध्यान रखना, जो व्यक्ति अहम के विसर्जन के बिना कुछ देता है उसका देना भी सार्थक नहीं होता। देने के पहले अहम का विसर्जन तो होना चाहिए। एक छोटी सी बिंदु होती है, बिंदु तो छोटी सी है लेकिन मस्तक पर चढ़ना चाहती है। अहम की जो बिंदी है वह बिंदी जिसको अनुस्वार कहते हैं है जरा सी लेकिन बैठना चाहती है सबसे ऊपर। अहम का विसर्जन किए बिना हम जो देते हैं वह देना सार्थक नहीं होता। राजा भोज जो भी देते थे नीचे दृष्टि करके देते थे, उनके पुरोहित मंत्री को चिंता हो गई कि यदि इस प्रकार से राजा भोज देते जाएंगे तो सारा भंडार खाली हो जाएगा। इसलिए जहां राजा भोज आहार करने के लिए जाते थे वहां पर एक बोर्ड लगा था, उस बोर्ड पर मंत्री ने लिख दिया आप दर्थे धनम रक्षित। राजा भोज जब भोजन करने के लिए गए उन्होंने देखा कि बोर्ड पे लिखा है आप दर्थे धर्म रक्षित, इसका अर्थ है आपत्ति के समय में धन रक्षा करता है। राजा भोज समझ गए कि यह चरण जो है वह मंत्री ने लिखा होगा। उन्होंने उसमें दूसरा चरण लिख दिया संपदाम कुत आपदा। जब राजा के मंत्री ने देखा दूसरे दिन वह भी समझ गया कि यह दूसरा चरण राजा भोज ने लिखा होगा। उसमें लिखा था कि संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं जो दानी होते हैं उनके कभी आपत्तियां आती नहीं। मंत्री ने तीसरे दिन तीसरा चरण लिखा और उसमें लिख दिया यदि स्यात आयाति, यदि अचानक कोई विपत्ति आ जाए तो। राजा भोज फिर भोजन करने गए, उन्होंने देखा ये बड़ी बात लिख दी यदि स्यात आयाति, यदि कदाचित दुर्भाग्य से असाता कर्म के उदय से विपत्ति आ जाए तो। राजा भोज विद्वान थे, उन्होंने चौथा चरण लिखा संचितोपि विनश्यति, यदि कभी विपत्ति अशुभ कर्म का उदय आ जाता है तो संचित किया हुआ धन भी नाश को प्राप्त हो जाता है। असाता कर्म का उदय तो ऐसा होता है। जब चौथा चरण मंत्री ने देखा राजा भोज की विद्वत्ता का आभास उसे हो गया और उसने उसी दिन संकल्प किया देने से कभी कोई चीज घटती नहीं है, देने से तो बढ़ती है। महानुभाव निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। हमारे पास जो हमारे पुण्य कर्म से अर्जित संपत्ति है उसका हमें इसी प्रकार से अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए और त्याग की परिभाषा को और दान की परिभाषा को विस्तृत रूप से सूक्ष्म दृष्टि से समझ के अपने जीवन से बुराइयों का पलायन और विसर्जन करना चाहिए और अच्छाइयों का अर्जन करना चाहिए। आज त्याग धर्म की सार्थकता के ऊपर इतना ही पर्याप्त है। परम पूज गुरुवर की मंगल देशना आप सुनेंगे। बोलिए 1000 शांति नाथ भगवान की जय। बोली देवाघर आपकी आदिनाथ भगवान की जय। अब पूज मिल जात के चरणों में समर्पित चार पंक्तियां। अरे आप पे अगर अच्छी हो तो इंसान बना देती हैं, आते अगर अच्छी हो तो इंसान बना देती हैं और आते अगर बुरी हो तो हैवान बना देती हैं। अरे आते ही व्यक्ति को इंसान बना देती हैं और आते ही व्यक्ति को हैवान बना देती हैं। गए आते अगर अच्छी हो तो, अरे गए आते अगर अच्छी हो तो आते ही व्यक्ति को समझागर बना देती हैं। व्यक्ति को समझ इन भावना के साथ मैं उपस्थित साधारण बंदे की ओर से, माता बहनों की ओर से प्लीज मिली समरसागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ कि वो अपनी आत्मकल्याणी वाणी के माध्यम से हमें सदुपदेश देने की कृपा करें। प्लीज मिली समरसागर जी महाराज जी जो चीज आई है उसको हम देखें कि चार लोगों के लिए वो आएगी काम की नहीं आएगी, इस प्रकार अपन ध्यान रखें, दूसरे का भी ध्यान रखें। तो किस प्रकार से अपने को भोगना चाहिए जिससे कि दूसरे का आयत ना हो। और तीसरी चीज है कि कब तक ग्रहण करें अपन, जब तक अपन से त्याग हो सके तभी तक ग्रहण करें, जब उसमें से त्याग नहीं हो सके तो ग्रहण करना भी छोड़ दें। तब तक ग्रहण करना चाहिए जब तक त्याग होता रहे, नहीं तो त्याग नहीं कर पाओ तो नहीं भोगना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उतना ही ग्रहण करें जिससे त्याग भी कर सकें। और आखिरी बात है कि ग्रहण करें या कि नहीं करें, स्वपर कल्याण हो तो ग्रहण करें, तो नहीं तो त्याग करते जाए। किसी भी चीज़ को ग्रहण करें तो देख लें कि अपना और दूसरे का कल्याण होगा कि नहीं होगा, इतनी बातें अपनी ग्रहण और त्याग के प्रति होनी चाहिए, तो अपना त्याग सार्थक होगा। और त्याग जो है, दान जो है, तीन प्रकार का होता है, एक तामसिक दान होता है, एक राष्ट्रिक दान और एक सात्विक दान। तामसिक दान वो कहलाता है जो कि क्लेश पूर्व होती है, जैसे अपन ने कहूँ दान दो को क्षेत्र में दान दो, और मैं ज्यादा चिंता लगी कि वहाँ पटिया लगा गए हमारे नाम को, पटिया हमारा कमरा बांधने गए हमारे नाम को, ये इतनी चिंता दान देते समय ये बहुत चिंता रहती लोगों को कि हमारा पटिया लगा गया नहीं, हमारा नाम देखो ये है कि नहीं, दान दिया नहीं अभी, और दान देने से पहले वो हमारा नाम बोलो, हमारा माइक के नाम बोलो कि एक सौ रुपया दान दो, तो जो नाम की आकांक्षा है वो बनी हुई है, संकलेश है। तो इस प्रकार ये तामसिक दान और आस्तिक दान में ये करा था कि दूसरे का तिरस्कार करके दान देना, मैंने दूसरे को ये बताना कि हम इतना पैसा दान दे रहे हैं, तुम नहीं समझते हम कितना सारा दान देते। इस प्रकार ये रास्तिक दान क्या हुआ, एक ब्राह्मण सेठ जी के यहाँ मांगने के लिए आया, तो सेठ जी ने और जो धन पैसा निकला वो धन पैसा ब्राह्मण के लिए दान दे दिया, और ब्राह्मण से बोले कि ले जाओ तुम भी क्या कहोगे कितना ज्ञान दान दिया। तो ब्राह्मण ये बात सुन करके बहुत चकित हो गया, उसने कहा कि सेठ जी इस प्रकार दान दे रहे कि ले जाओ तुम भी क्या कहोगे कैसा दान भीड़ था, इस प्रकार की भावना से। तो ब्राह्मण ने अपने जेब में रखे हुए एक नई पैसे का सिक्का निकाल करके पूरी संपत्ति को वो डाल दिया और कहा कि तुम रख लो पूरा का पूरा, उसने नहीं लिया और अपना और उसने दे दिया। इस प्रकार अहंकार करके दान नहीं देना चाहिए, तिरस्कार करके दूसरे, ये सात्विक दान है। सात्विक दान है जिसमें अपन कर्तव्य मान के दान देते हैं, स्वपर कल्याण की भावना से, प्रति उपकार की भावना से दान देते हैं, वो दान ही सात्विक दान सही दान कहलाता है। एक रहीम खान खाना थे और गंग कवि थे, गंग कवि बहुत बड़े कवि थे, उनके लिए दान देना था, तो रहीम खान खाना है उनके लिए गाड़ी भर भर के वो दान की राशि रात में भेजी। तो गंग कवि बहुत चकित हुए कि रात में वो दान दे रहे हैं किसी को बिना बताए, और इतना सारा दान दिए। तो गंग कवि ने लिख करके दो लाइन भेजी कि कहाँ सीखे साहजी ऐसी जनी जैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करो पीते क्यों तो नीचे नैन, आपने ऐसा दान देना कहाँ सीखा कि जैसे जैसे आपने हाथ ऊपर करे वैसे वैसे आपकी दृष्टि झुकती चली गई। तो गंग कहीं खाना खाना भी कम नहीं थे, वो भी कमी थे, उनने उनको लिख करके दो लाइन भेजती कि देनहार कोई और है देते रहते हैं दिन रैन, लोग भरम मुँह पर करें ताते नीचे नैन, हम तो देने वाला तो कोई और है जो दे रहा है लेकिन लोग भ्रम करते हैं कि मैंने दिया, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर के मेरी दृष्टि झुक जाती है। इस प्रकार दान देते समय धर्म का कभाव होना चाहिए, कच्ची उपकार की भावना होना चाहिए, तो अपना दान साझा चलाएगा। इस प्रकार दान में परिग्रह की निवृत्ति होती है वो कहलाता त्याग, और परिग्रह के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो वो कहलाता दान। यही त्याग और दान में फर्क है, जिसमें कि परिग्रह की निवृत्ति परिग्रह से मुक्त हो गए वो तो कहलाएगा त्याग, और जिसमें अपने परिग्रह का ठीक दूसरे के लिए भी काम आए इस प्रकार का भाव रख के परिग्रह को नियंत्रित कर दिया वो कहलाएगा दान। इस प्रकार दान और त्याग अपने जीवन में दोनों आवे तो अच्छा है, इसी भावना के साथ कि अपने जीवन में त्याग धर्म आए, बोली महावीर भगवान की।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आचार्य श्री जारी चढ़ा।
हे गुरु वर साध भक्त सुखदर सकिया, नग्न स्वरूप मारा है जग की। जब जग दिखिया मैं रथ पथ कर गाफल निद्रा में सोता हूँ अथवा वै ओ अरबन साका सन्नाटा बन मैं बन चारी चरते तब सां करते तप चल नदी तट पर तर पल बरसा की घड़ियों में संतरस अंतर जाला हरती बानी मानो बढ़ती फुल गलियां भगवन तुम सादानी क्या कोई ये जग को दे दी जग तीन दिया दिन रात हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम हे शांति उदक चांदन तांडुल पोत्व कई चरत दीप तदो पल अर्ग कई दबल मंग नान रमा कोली जिन गए मुनि राज मन ओम श्री अमरकंटक विराजमान संत श्रीमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी संघर्ष आर्य नगर के दिन मंदिर में विराजमान महामुनिराज परम पूज एक हजार श्री समसागर जी महाराज जी मुनि श्री भद्रसागर जी महाराज जी मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी मुनि श्री हरियाण सागर जी महाराज जी उनके शरणागत बिंदुओं को अनर्ग पद प्राप्त आय अर्घन निर्पाम थी या बानी के ज्ञान से सूझ लो का लो तो बानी मैं सके दरो सदा देख हे दिन बानी भारती तो जपा दिन रैन जो संग ना गए तू पा गए सुख तू कैसे करूँ बोली गौरव चांद जनवानी माता की बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय बोली परम पूज्य स्वर श्री समसागर जी महाराज जी की जय बोली परम पूज्य स्वर श्री भद्र सागर जी महाराज जी की जय बोली परम पूज्य स्वर श्री अभय सागर जी महाराज जी की जय बोली परम पूज्य स्वर श्री श्याम सागर जी महाराज जी की जय मुनि संग की जय मुनि संग की जय दस लक्षण महापर्व की जय दशलक्षण महापर्व की जय भारतों का दिनों मध्यम समाज आ रहे हैं हार्दिक स्वागत करती है हार्दिक अभिनंदन करती है भारतीय पदारी अतिथियों की आतिथ्य की व्यवस्था दिनों मध्यम समाज आ रहे हैं द्वारा रखी गई है अतः सभी से अनुरोध है कि हमारे आतिथ्य को स्वीकार करने की कृपा करें।